हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी दादी नैना को देखकर बोली थी, नैना, सच कहूँ तो हमें आपके बारे में जो कुछ सुनने को मिला वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम आपसे ओबेरॉय मेंशन में आकर मिलने वाले थे, लेकिन उस वक्त आप किसी न किसी पार्टी या इवेंट में बिजी रहती थी। इनफैक्ट शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब आप इस शहर का सबसे मशहूर सेलिब्रिटी चेहरा बन चुकी हैं। हम जानते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, और वाकई आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने इतनी बड़ी तकलीफ सहकर भी उसे अपने अंदर जगह दी और उसे जन्म दिया। यहाँ दादी सीधे सीधे झलक का नाम लेने से बच रही थीं। वहीं नैना तुरंत अपनी आंखों में आंसू और मायूसी लाकर बोली थी, हम जानते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए बहुत ही एहसास है, लेकिन दादी आप तो जानती हैं ना, अब भले ही कोई हमारे मुंह पर कुछ ना कहे, लेकिन न जाने लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमें अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी ईशान जी ने तुरंत नैना के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें दबाते हुए कहा था, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है कि मेरी बीवी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब कहीं ना कहीं दादी को काफ़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने परिवार का ऐसा रूप नहीं देखा था, झलक से ज़्यादा मोहब्बत थी और उन्हें लगता था कि ओबेरॉय परिवार ने झलक के साथ गलत किया। लेकिन जब से झलक की सच्चाई उनके सामने आई है, उन्हें लगने लगा था कि कोई भी होती वो ऐसी सिचुएशन में ऐसी लड़की को अपने पास नहीं रखती जो उसे उसके साथ हुए गलत अपराध की याद दिलाती हो। इसलिए दादी को लगा कि इसमें पूरी तरह से नैना ही सही व्यक्ति है, और वैसे भी खुद दादी ने भी तो झलक से मुंह मोड़ लिया था जब उन्हें पता चला कि झलक एक गलत रिश्ते की निशानी है। फिलहाल दादी ने जल्दी से नैना को देखकर कहा, देखिए मिस्टर और मिसेज ओबेरॉय, आप लोगों को पता है कि हमें बातें घुमा फिराकर करने की आदत नहीं है, हम इसी तरीके से आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हम आपकी बेटी आकांक्षा के लिए अपने सिद्धार्थ से हाथ मांगना चाहते हैं। पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बीच में इतना कुछ ड्रामा हो गया कि सिद्धार्थ को मजबूरी में झलक से शादी करनी पड़ी, लेकिन अब क्योंकि झलक है ही नहीं और वो इस दुनिया से भी जा चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब आपको हमारे कहे अनुसार उनकी शादी के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात आप लोगों से कह रही हूँ। दादी ने जल्दी ही अपनी बात क्लियर कर दी थी। अब ये सुनकर नैना और ईशान का दिल काफ़ी खुशी से भर गया था, क्योंकि अगर इस प्रसिद्धि के साथ साथ हुराना परिवार का भी उन्हें साथ मिल जाता है तो उनसे बड़ा और प्रसिद्ध परिवार पूरे शहर में कोई नहीं होने वाला था। वहीं ईशान जी थोड़ा सा सोचने का नाटक करते हुए बोले, मिसेस खुराना, आपका प्रपोजल वाकई काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम बिना आकांक्षा की मर्जी से इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और फिर आपको भी तो सिद्धार्थ से बात करनी होगी ना। अब ये सुनकर दादी एक पल के लिए हैरानी से भर गई थी कि न जाने सिद्धार्थ को जब भी पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो वाकई आकांक्षा से शादी करने के लिए तैयार होगा या फिर कुछ और होगा। लेकिन फिलहाल तभी दरवाजे पर आकांक्षा और सिद्धार्थ आए, जिन्हें रणविजय ने मौका देखकर बुला लिया था ताकि सिद्धार्थ सारी बातें सुन सके। अब जैसे ही वहां आकर खड़ा हुआ, सिद्धार्थ ने तेज आवाज में बोला, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं। इतना बोलकर सिद्धार्थ तुरंत अपने कमरे में चला गया। वहीं आकांक्षा को तो दिल किया कि खुशी से जाकर फटाफट रणविजय को ही गले लगा ले। आखिरकार रणविजय ने उसका इतने दिनों का झटका पूरा कर दिया था और उसका ये सपना भी पूरा कर दिया था। हालांकि आकांक्षा को याद था कि रणविजय का क्या प्लान है, लेकिन वो सिद्धार्थ को पाने के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। लेकिन फिलहाल नैना ने आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटा तुम्हारी क्या राय है, क्या तुम सिद्धार्थ से शादी करना चाहती हो? जैसे ही आकांक्षा ने ये सुना, उसने तुरंत अपनी माँ को गले से लगा लिया। हाँ, अब तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब दादी एक्साइटेड होकर बोली, चलो दोनों बच्चों ने सगाई और शादी के लिए कह दिया है, अब तो आप लोग देखना, मैं बहुत जल्द इन दोनों की धूमधाम से पहले सगाई और फिर शादी करवाऊंगी। लेकिन तुरंत ईशान थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला, लेकिन क्या इतनी जल्दी, अभी झलक की मौत को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, और अगर इतनी जल्दी हम इन दोनों की शादी करेंगे तो काफी कुछ परेशानी हो सकती है। तभी मिसेस खुराना ने कहा, आप फिक्र न कीजिए, वैसे भी सब लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उस लड़की की क्या पहचान थी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात से कोई एतराज होगा, और एक बार शादी हम अगले महीने करेंगे, इस महीने हम सगाई कर लेते हैं, ठीक है? ये बोलकर मिसेस ओबेरॉय ने जल्दी ही अगले सप्ताह उन दोनों की सगाई करने का डिसीजन ले लिया। अब आकांक्षा भी काफी खुश हो गई थी। रणविजय आकांक्षा के पास आया और अपना हाथ बढ़ाकर उसे मुबारकबाद देने लगा। आकांक्षा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रणविजय ने बड़े ही अच्छे और अजीब ढंग से आकांक्षा के हाथों को टच किया।
एक पल के लिए आकांक्षा थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन उसने उसकी बात का कोई बुरा नहीं माना। फिर वो लोग जल्दी ही वहां से निकल पड़े और ओबेरॉय मेंशन की ओर चल पड़े। रास्ते में आकांक्षा खुशी से उछल उछल कर गाना चाहती थी। उसने तुरंत अपनी माँ को एक बार फिर गले से लगा लिया। माँ, मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक सच की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। हमें पूरे समाज में कितनी इज्जत मिल रही है। इतना ही नहीं, अब तो आप MLA भी बनने वाली हैं, क्योंकि पार्टी वालों ने आपको चुनाव के लिए चुना है। आप सोच भी नहीं सकते कि इसका क्या मतलब है। अब वो जल्दी ही CM भी बन सकती हैं। आप सोच भी नहीं सकते। नैना ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक कर रही हो तुम। ये बोलकर उसने तिरछी नजरों से ईशान की ओर देखा। दोनों अच्छी तरह से सच जानते थे कि उन्होंने सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के सामने पेश किया था। असल में वो कितना बड़ा झूठा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली थी कि जेल में बंद आरव मल्होत्रा को कोई भी पूछने वाला नहीं था और झलक का असली सच भी किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी अभिशान ने सोच लिया था कि जिस तरीके से नैना पार्टी में शामिल होने वाली है, दोनों ने डिसीजन लिया था कि जेल में जो आरव बंद है उसे वहीं खत्म कर देंगे, ताकि उसके कारण उनकी जिंदगी में कुछ गलत होने के कुछ भी चांस न बचे। हालांकि कोई भी अब आरव की बातों पर यकीन नहीं करने वाला था, क्योंकि आरव जब जेल में थे वो पूरी तरह से चीखकर सबको सच बताने की कोशिश किया करता था, लेकिन बड़ी ही चालाकी से नैना और ईशान उसे शॉक ट्रीटमेंट दिलवा देता था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। फिलहाल शाम को घर पहुंचने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर ईशान से कहा था कि उन्हें अब जल्द से जल्द आरव को इस दुनिया से हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक आरव जिंदा रहेगा उनकी गर्दन पर तलवार लटकती रहेगी। तुम जानती हो, कॉलेज के दिनों में वो मेरे पीछे किस कदर लट्टू था, लेकिन उसके पास पैसे के नाम पर कुछ नहीं था। हालांकि वो मुझसे कितना प्यार करता था ये बाद में अच्छी तरह से पता चला, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुंबई में जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो पूरी की पूरी उसी की थी, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे उस वक्त कैसा लगा। जब ईशान और नैना दोनों उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ काम के लिए गए, तब उन्हें पता चला कि वहां का मालिक आरव मल्होत्रा है। नैना की आंखें फटी रह गईं। मुंबई में उसका कितना बड़ा बिजनेस होगा, उसे तो पता था कि आरव एक मामूली मिडिल क्लास स्टूडेंट है।
क्योंकि दादाजी के मना करने के बाद आरव ने अपनी असली पहचान पूरे ऑफिस और कॉलेज में कभी नहीं बताई थी। जब नैना ने मुंबई में आरव का बिजनेस देखा और तब उसने फोन पर बात की, तो उसे समझ में आ गया कि वे अपनी शादी से खुश नहीं हैं। इसलिए ईशान और नैना दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अब कंस्ट्रक्शन साइट को हड़प लिया जाए, क्योंकि उनके पास उस वक्त खास बिजनेस या पैसे नहीं थे।